इस एक पूरे रुकू में अगर आप देखें ना, तो मुस्तहजियून का लफ्ज आपको बार बार दिख रहा है। इस्तेहजा, खा जा हमजा, किसी को हकीर जानना, जैसे कम अकल समझना। आज भी आप देखिए मौलवी साहब में तो अकल कम ही होगी। शलवार जो ऊंची बांधते हैं, टखनों से ऊंची शलवार, ये इनको क्या मिलना है? इनको समझ ही कोई नहीं है। ये दाढ़ी क्या है? ये बेवकूफी की अलामत है। और ये जो है ना, ये सर पे हिजाब पहन लेती है ना, फिर भी गिफ्तें कोई नहीं छोड़ती, ये मजाक है। मुस्तहसियों, हर बात को दीन से लगाना, यानी मुझे ऐसे लगता है कि दीन को सुतेला बच्चा बनाते हैं हम पहले, फिर अदालत के कटहरे में खड़ा करते हैं, फिर उस पर तीर फेंकते हैं। हर बुरी बात दीनदारों से। और आज कोई सूटेड बूटेड जरा सा को मॉडर्नाइज किस्म का शख्स हमें दिखे तो हम कहेंगे ये कोई आया होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, कम से कम इसने पीएचडी तो जरूर ही की होगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, याद रखिए, ये दीन वालों का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। इस्तेहजा कहते हैं दूसरे को अपने से कमतर समझकर उसका मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, मौकरी, बुली करना, ये सारे मानी है। और यहां अगर आपको मैं थोड़ा सा, मुझे माफ कर दें, तो लफ्ज तो है खा हा जाल हमजा, लेकिन ये सीन कहां से आ गया? इसको बाब इस्तेफाल कहते हैं। अलिफ सीन ता जिस जुमले में लग जाता है ना, उसमें तलब पाई जाती है। इस्तेफाल के मस्तर से इस्तेहजा है ये लफ्ज, इसम फाइल है ये। क्या मतलब? मजाक बनाकर इनकार करना। और ये जो लफ्ज है ना, यमुद्दुहुम, आपने तजवीद में पता नहीं अभी पढ़ा है कि नहीं, मद मद असली है ना, खींचना, मद, तो मद क्या, ये मद क्या रूट होगा इस? अब मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूं, लफ्ज मद से जरा बनाइए कुछ लफ्ज और भी। मदद भी इसी से ही है, शाबाश। एक मदद होती है, एक और लफ्ज है मद, इसमें क्या होता है? सूरह कहफ में क्या पढ़ते हैं? मेदा दल्ली कलीमाती, स्याही, एक कतरा इधर लगाएं, जरा कपड़ा लाएं तो वो यहां तक खिंच के जाएगी। ये सब एक ही लफ्ज है, मद मदद, यमुद्दू अमदाद, खींचने का मानी है। अब ये अल्लाह सुबहाना ताला का इनके साथ जो मामला है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, लेकिन एक आखिरी लफ्ज इसका थोड़ा देखिए, या माहून, लिखिएगा अरबी में आइन मीम हा, इसका रूट है अमहुन। और एक लफ्ज होता है आइन मीम या, अंधे को अरबी में क्या कहते हैं? अमा, अबसा व तवल्ला अंजा हुलामा। तो आइन मीम हा हो ना, तो दिल का अंधापन, ऐसी कैफियत के इंसान को रास्ता ही ना सुझाई दे, इधर उधर अंधों की तरह टटोलता फिरे। लेकिन जब आइन मीम या होगा तो असली अंधा, ब्लाइंड के मानों में, दिल का अंधा ज्यादा नुकसानदेह के आंखों का अंधा? दिल का अंधा, जी बिल्कुल, दोनों में मामूली सा फर्क है। आमल बसर और रॉ, आमा में देखने की सलाहियत का ना होना, और अमहुन में सोचने की सलाहियत का ना होना। क्या आपको लगता है कि अक्सरियत सोचती है? आपको लगता है कि अक्सरियत को ये समझ है? बहुत कम को है। ये वो लोग हैं जो वाकई अल्लाह के इस दीन से राजी नहीं है। आप देखिए कि आजकल दो गिरोह हैं हमारे इर्द गिर्द। एक वो है जब कुरान और हदीस की बात करते हैं ना, तो गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा है उनकी आदत में, तबीयत पे गुस्सा है, नारे वाला अंदाज है, पटकते हैं, टेबल के ऊपर हाथ मारते हैं, वो चीख के कहेंगे मारो इनको, कत्ल करो इनको, ये करो उनको, वो करो, ये नहीं, हर वक्त ही गुस्से में है। तबलीग भी करेंगे तो कहते हैं बस खत्म हो गया वक्त इनका, इनके दिन गिनेंगे, मुर्दाबाद। एक दूसरा भी गिरोह है माशाल्लाह, वो कहते हैं चुप, जिहाद की बात नहीं करो, सिर्फ फजाइल इबादतें, नहीं ऐसी बातें करो ही ना जिससे फितना फैलता है, प्यार 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 की बातें करो, और हमें ये नहीं करना। देखो हम जहां रह रहे हैं ना, हमें उनको खुश भी करना है। बस आप देखिए कि जो मस्जिदों में खुतबे होते हैं ना, यहाँ का मुझे नहीं पता, मैं अमेरिका की बात करती हूँ, तो कोई भी आम स्पीकर किसी मस्जिद में जाके खुतबा देगा ना, तो खुद नहीं दे सकता। एक रूल बनाया हुआ है वहां की ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो पूरा खुतबा पहले से वो लिखकर मस्जिद को भेजते हैं, वो ऑडिट होता है, ये जुमला नहीं बोलने, ये लफ्ज ना बोलें, ये करें वो करें, फिर उसके बाद बोलना पड़ता है उनको। वो उसमें लफ्ज, गोया की मिसाल दे रही हूँ कि लफ्ज जिहाद अगर आपके खुतबे में आ गया ना, तो वो कहेंगे सॉरी यू आर नॉट एबल टू डू खुतबा हियर, यू कैन गो। इस तरह के हालात है। इस्लाम मुझे आपको एक जरूरत दे रहा है, पूरे कुरान और हदीस में एक भी ऐसी बात नहीं है जिस पे हमें किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत है। हमारा अपना इल्म महदूद है, हम खुद अपनी किताब पे शक रखते हैं, हमें पता ही नहीं, इसलिए गैर मुस्लिमों से बेमौका दबते हैं। अरबी जबान में एक जुमला बोलते हैं, अलव्वलु मिन अलव्वल, तरजीहात को मुकर्रर करो, सबसे पहले जिस चीज को शेयर करना है ना वो करो। मुझे ऐसे लगता है अगर सारी दुनिया के मुस्लिम स्कॉलर्स आज के दौर में इस बात पे एका कर लें, मसलन 2016 है, अब तो आधे से भी ज्यादा गुजर गया, 3 महीने रह गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरी दुनिया में से एक तहरीक उठे, हर जुमे के खुतबे, ईद के खुतबे, हज के खुतबे, उमरे के खुतबों में जहाँ भी पैगाम दिया जाए, स्पीचेस करनी है आपको, कहीं दावत दी जा रही है, कोई दावा ट्रिप है, हम सिर्फ एक ही जुमले पे बात करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद सिखाएंगे लोगों को, नो मोर एनी थिंग, पूरी दुनिया से एक दफा शिर्क को खात्मा करें। आप यकीन करें अगर ये बात हम लेके आ जाए ना आगे, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ये नहीं फैलाएं, आप कहते हैं ये 3 माह, जैसे वो लोग कहते हैं ना हिजाब डे या फला, आप कहते हैं तौहीद सिखानी है, तौहीद की किस्में, शर्क शिर्क क्या है, तौहीद क्या ये है, फिर अगले 6 माह आप कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह का असल मुकाम है, उस पर बात लोगों को बताते हैं रसूल थे कौन, फिर उसके बाद आखरत, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप 2017 में पूरी दुनिया को फैला देना, बाकी बातों, ये जिहाद और निकाब और दाढ़ी और नेल पॉलिश, ये बातों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा मसला ये होता है कि ना हमने लोगों को अल्लाह दिखाया, ना अल्लाह की बातें बताई, हाँ फिर वो कहता क्या चाहता क्या वो बताना शुरू हो जाते हैं, तो कोई किसी की बात क्यों माने, जिसने उसको बड़ा ही नहीं माना वो उसकी माने क्यों। एक इम्प्लॉई है, अपने किसी को मतलब अपना बड़ा बॉस माने ही नहीं, शेफ माने ही नहीं, वो तो कहेगा मैं क्यों करूं। सबसे पहले आज इंसानियत को एक तोहफा दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों अल्लाह तुमसे प्यार करता है, और किसी से दबने की जरूरत नहीं है। बस लोग पहले से नतीजा निकालते हैं, फिर उसकी दलीलें कुरान से ढूंढते हैं और मिल भी जाती हैं। देखिए ये कुरान हमें अपनी बात समझाने आया था, हम कुरान को महज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे नजरियात को ये प्रूव करे, इसलिए कभी भी ये चीज ना रखिएगा कि आप अपने आप को इस किताब के आगे मजबूर करें। आज अपनी फिरकावारियत को हमने इस कुरान से साबित किया, आज हम अपनी बेअमलियों को, अपने सूद को हमने इस कुरान से साबित किया, आज हमने अपने पूरे लाइफ स्टाइल को इस किताब से आहज किया। आप पूरा कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी तो शुरू हुआ है, कुछ चीजों की तकरार है, तकवा, सब्र, अच्छा अखलाक, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने कुछ चीजों को बहुत ज्यादा खोल के बयान किए, कुछ को बहुत थोड़ा थोड़ा। मुझे आपको दर्स किस पे देने चाहिए, अगर हम दर्स देते हैं तकवा पे दीजिए, अखलास पे दीजिए, अदल पे दे, सच्चाई पे दीजिए, अखुवत सिखाइए, दावत सिखाइए, माफ करने की फजीलत, सब्र, इस पे बात करें, लोग कहते हैं आता ही मौजू, सब्र हमें आता, कुछ और बताएं। हम छोटी छोटी बातों पे, तरावियां कितनी होनी चाहिए, औरत की नमाज ऊपर है मर्द की नीचे है, कैसे है वैसे है नहीं, देखिए एक होता है किसी को बताना और एक होता है किसी को सिखाना। लिखिए जरा बताना क्या, एक बार बता दे काफी है, आप अपने बच्चे को बता दें, ओके यस मम्मी आपने बता दिया था, इट्स ओके, मुझे पता है मुझे ब्रश करके सोना है, दैट्स इट, ओके। एक होता है किसी को सिखाना, क्या फर्क है दोनों में, बात बताई एक दफा जाती है, सिखाई बार बार जाती है। कुरान की वो सारी चीजें जाके ढूंढें जो अल्लाह ने बार बार सिखाई हैं, बार बार सिखाई हैं, ये है असल कुरान। इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन साबिरीन शाकिरीन, क्या वो ही नहीं जानता जो हमें पैदा करे, अला यालमु मन खलक, तो कुरान हमें बताया नहीं जा रहा, सिखाया जा रहा है, लेकिन संजीदा नहीं हम, सीरियस नहीं है हम कहते वजीफा बता देना, वो बेटी की शादी होनी है, कोई वजीफा बता दें जरा उसको नजर ना लगे, और हदीसों को भी हम अपनी मर्जी से कोट करते हैं, सल्लु कमा रई तुमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा, ये बहुत खूबसूरत हदीस है, सही रिवायत है, कुछ ने इसके साथ हाथ बांधने को रखा, ऊपर नीचे कहाँ रुकू सजदा, एक्शंस पे रहे, कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह के नबी की नमाज किस खुशू की थी, कि आपकी बीवियां कहती हैं कि आपके सीने से हंडिया के खोलने की आवाजें आती थी। हम अपने बच्चों को नमाज में डूज एंड डोंट सिखाते हैं, किसी भी मस्जिद में आपका बच्चा जाए, हमारे स्कूल में भी शायद ऐसे ही करते होंगे, नमाज पढ़ो, खड़े हो जाओ, रुकू क्याम सजदा सलाम, चलो रुकू की ये दुआएं, क्याम की ये, सजदे की ये, खुदा हाफिज, आपने नमाज नहीं सिखाई, एक्सरसाइज सिखाइए। हमारे यहां तो कुरान को क्या कहते हैं, नजरा। पढ़ लिया माशाल्लाह, जिस दिन बच्चे ने आमीन की उस दिन ग्रेजुएशन हो गई। बच्चा हमारे यहाँ आमीन के बाद फारिग हो चुका होता है। मौलवी साहब को भी एक 4 साल पुराना केटी का जोड़ा रखा हुआ दे दिया कि मौलवी साहब इसको सिला लीजिएगा। हमारे बच्चे सोचते हैं और क्या पढ़ना है, 3 साल में स्काइप पे कुरान तो पढ़ लिया। जब हम अपने बच्चों को आमीन की रस्म के बाद गोया के दीनी तौर पर ग्रेजुएट कर देंगे, मुझे ये बताइए वो इस कुरान की तरफ कैसे आएंगे। ये जो फसाद की सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, ये कुरान की दावत के आम होने से आता है। मक्का वाले मरने मारने पे तुल गए थे इस कुरान की दावत के आगे। आज हम इस कुरान को सुनते हैं टस से मस नहीं होते, अंडर एस्टिमेट करते हैं। हर चीज के लिए वक्त है। मेरी किसी से बात हो रही थी और मैं देखती हूँ कि 1 बजे के बाद माएं बेचैन हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल से लेना जाना जैनियन है। मैं मानती हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं कह रही जो 1 बजे चले जाते हैं अपने बच्चों को लेने, मजबूरी होगी। बट सेम शख्सियत, सेम हालात, सेम बाँ, सेम माँ, सेम बच्चे, सेम मुल्क, सेम दुनिया, वही माँ 5 बजे अब घर आती है। क्यों वहां से 1 बजे नहीं आ सकते? मेरा सवाल ये कि बच्चों का क्या बनता है फिर? अब उनको तो किसी के पास छोड़ रहे हैं। दैट मीन वी आर अंडर एस्टिमेटिंग दिस कुरान। हम जिन बच्चों का नाम ले लेकर इस किताब से दूर है ना, वल्लाह इसी किताब ने हमें अच्छी माएं बनाना था उनके लिए। कुरान इस कुरान को सुनकर काफिर सजदों में गिर जाते थे, उनको याद ही नहीं रहता था कि हम मुसलमान नहीं है, वो भी रो पड़ते थे। हमारा आज हाल क्या कि ना हमारी आंख गीली ना कुछ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का एक बड़ा प्यारा कौल है, कहते हैं अगर दिल साफ होते ना तो कभी कुरान से दिल ना भरता। ये हजरत उस्मान का अरबी का कौल है जो मैं आपको उर्दू में लिखा रही हूँ। क्या मतलब? दिल साफ नहीं होता ना तो कुरान से दिल भर जाता है, वरना कभी दिल भर ही नहीं सकता। मेरा तो अल्लाह ना करे कभी मरते दम तक भी भरे। हर दिन तलब तड़प। मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, मैं सारा दिन जो काम भी करती हूँ ना, छोटे मोटे इधर के या घर के या स्कूल के, मेरी पूरा मेरा जिसको कहते हैं ना दिल पड़ा हुआ है, वो आपकी इस तफसीर में होता है। मैं खाना पका रही हूँ, मेरा दिल, दिमाग, मैं मीटिंग्स में, मैं इनको कहती हूँ मुझे फारिग कर दें इन सारे झंझटों से, आप जाने आपका स्कूल करें, मुझे ना तंग करें। मुझे गुस्सा आता है मुझे इन चीज़ों में, लेकिन मैं जब कुरान पढ़ती 8-8 घंटे कभी कभी आपके एक लेसन के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर भी मेरी तसल्ली कोई नहीं होती। यहां मैं आती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी ऐसे लगता है बहुत है अंदर, देना नहीं आ रहा, और कभी ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, क्या दूंगी। ये इतना बड़ा समंदर है जिसको आप और मैं पीने लगे। देखिए ये सारा वाकया जो आप और मैं अभी पढ़ रहे हैं ना, ये इस कुरान की दावत के आने के बाद था। आज उम्मत बेरूह है, इसमें रूह डालने के लिए रूह में रब्बी मिन अम्री रब्बी सलाम कौला मिन रब्बी रहीम, इस कुरान की रूह डालेंगे फिर कावारियत खत्म होगी, फतवाबाजी खत्म होगी, एक दूसरे के खिलाफ खत्म होगी, वरना क्वेश्चन आंसर सेशन। बस जी इमाम साहब आए हैं, इमाम साहब जरा सवाल जवाब का सिलसिला ना चले। अब वो सवाल जवाब लेके कर दे के उठेंगे ना लोग, क्या ख्याल है इमाम साहब की बात पे उनको यकीन आ जाएगा? कोई भी नहीं आना। अगले साल फिर कुर्बानी के मौजू पे वही सवाल पूछेंगे जो आज से पिछले 20 साल से पूछ रहे हैं, कभी इल्म नहीं आएगा। एक का फतवा, दूसरे का फतवा, एक का फिरका दूसरे के खिलाफ, सारी कोशिशों का रुख क्या है कि वो ला यालमून। और आप देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने तुगयानी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, फी तुगयानिहिम। अल्लाह ताला मुझे आपको सरकशियों से बचाए। ये तुगयानी कौन सी थी? ये दीनदारों की तुगयानी थी। जाहिल बेचारे की तो जरूरत ही नहीं होती, वो तो बोलता ही नहीं है, माइक पकड़ा दें तो कांपने लगेगा। बोलते भी तो वही है ना जिनको बोलना आता है। यहाँ सारी बात को अब सम अप करके आपको ब्रेक देती हूँ कि अभी तक जितना किरदार हमने इस रुकू में पढ़ा है ना, नाम नहीं लिया अल्लाह ने, लेकिन ये यहूद मदीना के उन उलमा का किरदार था जो मदीना के सीधे साधे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते थे। बात समझ आई? और यही फसाद था। कहते थे ये क्या नया नाम हमने सुन लिया, बाप दादा के वक्त में तो कभी सुना भी नहीं था। और उस पे जो रिएक्शंस हुए जो कि ये अगली आयत बड़ी खूबसूरत है, ये सारा जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा रैंडमली, इसका क्या आपका जहन में कोई कोई सोच, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।
बच्चों को जैसे आपने बताया कितना होता है ना, हम बेशक कुरान के साथ जोड़ भी रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उनको कैसे इस फसाद से बचा के रखें?
देखिए इतना छोटा इसका जवाब है, सवाल सुने आपने? क्या जो इर्द गिर्द फसाद फैला इससे बच्चों को कैसे जोड़े। ये बात मैं सबको कहूंगी, आपके बच्चे जवान हैं या आपके छोटे या आपके अभी हुए भी नहीं, अच्छी माँ बन जाए आप जितनी जल्दी मुमकिन है। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप अलोन हैं, सिंगल हैं, सबसे पहले द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि आपको इस कुरान की रूह समझ है। तर्जुमे की नहीं मैं बात कर रही, अब आपको इसमें से रूह लेनी है, और इस दफा मैंने रूह ही देनी है आपको। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको 2-2 घंटे में भी बात की हुई है। अच्छी माँ बन जाए, दूसरा नतीजा अच्छा शौहर ढूंढे। जिनके रिश्ते नहीं हुए थोड़ी देर सब्र करें, आ रहे हैं ना रिश्ते होने के, जरा थोड़ी देर रुक जाइए। अगर अभी शादी नहीं करनी तो फिर निकाह करके क्या खेल खेल लेना है आपने। अच्छा मर्द ढूंढे। और मर्दों को भी ये पैगाम, आप सबके बेटे जो फ्यूचर के बाप है, खुदा के लिए उनको अभी ये रूह दे दें कुरान की। जिस घराने की रूह माँ और बाप के अच्छे से हुई, मैं कहती हूँ वो नाइट क्लब के साथ वाले घर में भी रहता होगा ना, उसका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। और दूसरी बात है, बच्चे बड़े हो गए, आपसे बड़े हैं, आपके बराबर हैं, मैं कहती हूँ हाथ जोड़ लें अभी इनके आगे, इनको कभी भी जालिम माहौल के हवाले ना करें। पहली क्लास में उनका बच्चा जा रहा है और वो कहती है कि मैं 15 मिनट भी क्लास के बाद अपने बच्चे को स्कूल में नहीं छोड़ सकती। क्यों? मैंने कहा आप क्लास में से उठ के ना जाया करें, 15 मिनट रोक ले। कहती कि क्लास तक तो टीचर्स के कंट्रोल में होते हैं ना बच्चे, क्लास के बाद बच्चे क्या करते हैं। और उन्होंने कहा एक दिन मुझे देर हुई तो मैंने देखा दूसरी क्लास, यानी बच्चे से बस एक क्लास ऊपर का बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जो हरकत कर रहा था, मैं वो देख के नहीं देख सकी कि मेरा बच्चा ये देखे। फिर भी बड़ा हौसला है हमारा, ये अनपढ़ रह जाएंगे ना कुछ नहीं होगा। इस्माइल भी अनपढ़ थे, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी।
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ